एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे जबरदस्त कह सकते हैं अनोखे दिमाग वाले इंसान की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जिनका नाम शायद आपने सुना हो, रिचर्ड फाइनमैन।
जी हाँ, फाइनमैन।
ये सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी नहीं थे, नहीं, बल्कि एक कमाल के किस्सागो, एक बेहद जिंदा दिल इंसान और हाँ, एक बहुत गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति थे।
बिल्कुल।
और आज हम उनकी एक किताब पर बात करेंगे जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक सवाल है, व्हाट डू यू केयर व्हाट अदर पीपल थिंक।
तुम्हें क्या परवाह कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं।
हाँ, और ये किताब सिर्फ विज्ञान की पहेलियों को सुलझाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के एक तरीके, सच के प्रति अटूट ईमानदारी और वो जो एक डर होता है ना, समाज क्या कहेगा, उससे ऊपर उठने की कहानी है।
आपने बिल्कुल सही फरमाया, फाइनमैन वाकई एक बहुत ही असाधारण इंसान थे। 1965 में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में उनके काम के लिए भौतिकी का नोबेल मिलना, वो तो उनकी प्रतिभा का एक पहलू था।
हाँ, वो तो था ही।
पर उनकी असली पहचान शायद उनकी वो कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा, उनकी ईमानदारी और उनकी कहानी कहने की जो कला थी उसमें छुपी है।
सही कहा।
और ये किताब व्हाट डू यू केयर, ये उनके जीवन के दो बहुत अलग लेकिन गहरे अनुभवों का संगम है। एक तरफ उनकी पहली पत्नी आर्लिन के साथ उनका गहरा प्यार और दुखद कहानी, और दूसरी तरफ स्पेस शटल चैलेंजर दुर्घटना की वो जो हाई प्रोफाइल जांच हुई थी उसमें उनकी भूमिका।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था
और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि असली चीजों को, सच्चाई, समझ, अपने दिल की आवाज, इनको बाहरी दिखावे या दबावों से ज्यादा अहमियत कैसे दी जाए। ये दिखाती है कि एक पैना वैज्ञानिक दिमाग और एक बेहद संवेदनशील दिल, ये एक ही इंसान में कैसे साथ रह सकते हैं।
तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। फाइनमैन की ये जो अनोखी सोच थी, ये दुनिया को अलग नजरिए से देखने का तरीका, इसकी जड़ें कहाँ थीं? मैंने सुना है उनके पिता का इसमें बड़ा योगदान था।
हाँ, ये बात बहुत अहम है। उनके पिता मेलविल फाइनमैन, उनका उन पर बहुत गहरा असर था। वो पेशे से सेल्समैन थे लेकिन उनकी सोच बिल्कुल वैज्ञानिक थी।
अच्छा।
वो रिचर्ड को चीजों के नाम रटाने के बजाय उन्हें समझने पर जोर देते थे। एक कहानी है, शायद आपने भी सुनी हो, कि वो रिचर्ड को जंगल ले जाते और किसी पक्षी की तरफ इशारा करके कहते,
हाँ हाँ वो चिड़िया वाली कहानी।
जी वही, कहते देखो उस चिड़िया को देखो। इसका नाम जानने एक बात है, पर ये समझना कि वो अपने पंख क्यों सहला रही है, वो कैसे उड़ती है, वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, ये असली ज्ञान है।
मतलब नाम जानना बनाम कुछ समझना।
बिल्कुल। और ये फर्क फाइनमैन के लिए जिंदगी भर का सबक बन गया।
ये तो वाकई सोचने का एक बुनियादी फर्क है, सिर्फ लेबल नहीं बल्कि प्रक्रिया को समझना। और बचपन के कुछ और किस्से हैं जो दिखाते हैं कि ये सोच कैसे पनपी।
हाँ बिल्कुल। बचपन में वो अपने घर में रखे रेडियो ठीक करने में उस्ताद हो गए थे।
अच्छा।
लेकिन वो सिर्फ टूटे पुर्जे बदल कर काम नहीं चलाते थे,
नहीं,
वो पूरी सर्किट को समझने की कोशिश करते थे। हर तार का क्या काम है, सिग्नल कैसे चलता है, मतलब वो समस्या की जड़ तक जाते थे।
तय तक जाना।
हाँ, वो बताते थे कि कैसे पड़ोसियों के रेडियो ठीक करके उन्होंने न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा बल्कि किसी भी समस्या को उसके मूल सिद्धांतों से कैसे हल किया जाए ये तरीका भी सीखा। उनके लिए ये खेल जैसा था, पर इसने उनकी वो जो विश्लेषणात्मक सोच है उसकी नींव रखी,
जो बाद में फिर जटिल भौतिकी समस्याओं को सुलझाने में काम आई होगी।
निश्चित रूप से।
फाइनमैन का सफर सिर्फ वैज्ञानिक कामयाबियों का नहीं था, जैसा आपने शुरू में कहा, उनकी निजी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे, खासकर उनकी पहली पत्नी आर्लिन ग्रीनबाम के साथ उनका रिश्ता। वो कहानी तो वाकई दिल को छू जाती है।
हाँ, आर्लिन उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं भावनात्मक केंद्र थी। वो हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे, लेकिन जब उनकी सगाई हुई तभी पता चला कि आर्लिन को लाइलाज ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी है।
ओहो, उस जमाने में तो ये बहुत।
हाँ, उस जमाने में टीबी का मतलब था लगभग मौत की सजा।
हाँ।
परिवार, दोस्त सब ने शादी ना करने की सलाह दी, समाज का कहेगा, इसका डर दिखाया। लेकिन फाइनमैन, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने शादी की।
हाँ।
उन्होंने आर्लिन से शादी की ये जानते हुए कि उनका साथ शायद लंबा ना हो।
और यहीं से, इसी रिश्ते से किताब का वो मशहूर शीर्षक निकला, व्हाट डू यू केयर व्हाट अदर पीपल थिंक, तुम्हें क्या परवाह कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं।
जी हाँ, आर्लिन अक्सर फाइनमैन से ये सवाल पूछती थी जब भी वो सामाजिक दबावों या दूसरों की राय को लेकर थोड़े परेशान होते थे। ये महज एक सवाल नहीं था, ये आर्लिन के जीने का नजरिया था, एक फलसफा था जो उन्होंने फाइनमैन को भी सिखाया। ये एक सिद्धांत बन गया कि अपने मूल्यों, अपने प्यार, अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार रहना सबसे जरूरी है, भले ही दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो।
कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, खासकर जब वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे।
बहुत ज्यादा। वो लॉस एलामोस में थे, परमाणु बम बनाने के गुप्त कार्यक्रम पर काम कर रहे थे, और आर्लीन पास के अल्बुकर्की के एक सैनिटोरियम में भर्ती थी।
ओह।
वो हर हफ्ते उनसे मिलने जाते थे, अपनी पुरानी खटारा कार में घंटों सफर करके। सोचिए, एक तरफ दुनिया बदलने वाले गुप्त वैज्ञानिक काम का दबाव, दूसरी तरफ अपनी प्रिय पत्नी की बिगड़ती हालत और देखभाल की चिंता।
कल्पना करना भी मुश्किल है।
अलीन की बीमारी और उनकी जो हिम्मत थी, उसने फाइनमैन को जिंदगी की क्षणभंगुरता और सच्चे मानवीय रिश्तों की गहराई का एहसास कराया।
और मुझे लगता है आर्लीन की सिखाई ये बात, दूसरों की राय से बेपरवाह होना, ये उनके पेशेवर जीवन में भी जरूर काम आई होगी।
निश्चित रूप से। ऑल इन से मिली ये हिम्मत, अपने सच पर टिके रहने की जिद, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी एक अहम हिस्सा बन गई। वो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने से कभी नहीं हिचकिचाते थे।
हाँ।
सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा वैज्ञानिक कुछ कह रहा है, वो उसे आंख बंद करके मान नहीं लेते थे। वो हमेशा पूछते थे, सबूत क्या है, तर्क क्या है?
सही है।
तो आर्लीन का प्रभाव सिर्फ उनके निजी जीवन तक सीमित नहीं रहा, उसने उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके सोचने के तरीकों को गढ़ा।
नोबेल पुरस्कार तो उन्हें मिला ही, लेकिन शायद आम लोगों के बीच फाइनमैन की छवि सबसे ज्यादा बनी 1986 के स्पेस शटल चैलेंजर हादसे की जांच से। वो उस जांच आयोग के सदस्य थे और उन्होंने जो किया वो तो यादगार बन गया।
शख्सियत का एक सार्वजनिक अध्याय बन गई, जहां उनकी वैज्ञानिक ईमानदारी और सच को सामने लाने की जिद एकदम खुलकर सामने आई। वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त रॉजर्स कमीशन के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने बाकी सदस्यों की तरह सिर्फ आधिकारिक ब्रीफिंग और मीटिंग्स तक खुद को सीमित नहीं रखा।
नहीं, उन्होंने क्या किया?
वो सीधे उन इंजीनियरों और तकनीशियनों के पास गए जो असल में शटल पर काम करते थे। उन्होंने नौकरशाही और जो लीपापोती की कोशिशें हो रही थी उनको दरकिनार कर दिया।
और फिर आया वो मशहूर टीवी वाला क्षण, वो बर्फीले पानी वाला प्रयोग, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असल में हुआ क्या था।
हाँ, वो फाइनमैन का क्लासिक अंदाज था, एकदम ठेठ फाइनमैन। कमीशन की सार्वजनिक सुनवाई चल रही थी, बड़े बड़े अधिकारी जटिल तकनीकी भाषा में सफाइयां दे रहे थे।
हाँ, टालम टोल कर रहे होंगे।
बिल्कुल। फाइनमैन ने बीच में टोक कर एक ग्लास बर्फीला पानी मंगवाया। उन्होंने रॉकेट बूस्टर में इस्तेमाल होने वाली रबर की ओ रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसे क्लैंप से दबाया और फट से बर्फीले पानी में डाल दिया।
सबके सामने, लाइव टीवी पर?
जी हाँ, सबके सामने। कुछ देर बाद जब उन्होंने इसे निकाला तो वो रबर अपनी लोच खो चुका था, एकदम कड़ा हो गया था। फिर उन्होंने सरल शब्दों में समझाया कि देखिए, लॉन्च वाले दिन फ्लोरिडा में तापमान बहुत कम था और ठंडे मौसम में ये रबर सील ठीक से काम नहीं कर सकी, फैल नहीं सकी। इससे गर्म गैसें लीक हुई और धमाका हो गया।
बाप रे, कितना सीधा, कितना विजुअल सबूत।
बिल्कुल। किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा।
कमाल है। मतलब उन्होंने न सिर्फ तकनीकी कारण बताया, बल्कि नासा के अंदर की जो बड़ी गड़बड़ियां थीं उन पर भी उंगली उठाई।
बिल्कुल। और यही उनकी जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, शायद तकनीकी कारण से भी ज्यादा। उन्होंने पाया कि नासा के मैनेजमेंट और इंजीनियरों के बीच संवाद का भयानक अभाव था।
अच्छा।
इंजीनियरों ने ओरिंग की समस्या के बारे में बार बार चेतावनियां दी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन चेतावनियों को या तो नजरअंदाज किया या उनके जोखिम को बहुत कम करके आंका।
मतलब बात ऊपर तक पहुंची ही नहीं या अनसुनी कर दी गई?
हाँ, कुछ ऐसा ही। मैनेजमेंट उड़ान की सुरक्षा को लेकर जरूरत से ज्यादा आश्वस्त था, शायद जनसंपर्क के दबाव में, जबकि इंजीनियरों को असली खतरों का अंदाजा था।
और फिर उन्होंने वो अपेंडिक्स एफ लिखा।
जी हाँ, फाइनमैन ने अपनी रिपोर्ट के अंत में एक परिशिष्ट जोड़ा जिसे अपेंडिक्स एफ कहा जाता है। इसमें उन्होंने नासा की कार्य संस्कृति, सुरक्षा के प्रति उनके ढीले रवैये और सच्चाई को दबाने की प्रवृत्ति की बेहद तीखी और बेबाक आलोचना की। और उनकी वो एक पंक्ति तो अमर हो गई, फॉर अ सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी रियलिटी मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर पब्लिक रिलेशंस, फॉर नेचर कैनॉट बी फूल्ड।
सफल तकनीक के लिए वास्तविकता को जनसंपर्क पर वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वाह।
बिल्कुल। सच को आप पीआर से ढक नहीं सकते।
तो फाइनमैन के जीवन की इन कहानियों को सुनकर अगर हमें उनके मूल दर्शन या जीवन मूल्यों को समझना हो तो वो क्या होंगे? ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें चलाती थी, ड्राइव करती थी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और शायद सबसे अहम चीज थी बौद्धिक ईमानदारी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। फाइनमैन का मानना था कि दुनिया में सबसे आसान काम है खुद को धोखा देना, और इसीलिए एक वैज्ञानिक का या असल में किसी भी सोचने वाले इंसान का पहला सिद्धांत होना चाहिए कि वो खुद को मूर्ख ना बनाए।
खुद से ईमानदारी।
हाँ, सच को स्वीकार करना, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो, हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता थी। ये सिर्फ दूसरों से सच बोलना नहीं था, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार होना था।
और उनकी वो गजब की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ऐसा लगता था जैसे वो हर चीज के अंदर झांक कर देखना चाहते थे कि वो काम कैसे करती है।
निश्चित रूप से उनकी जिज्ञासा सिर्फ फिजिक्स तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, वो बोंगो ड्राम बजाते थे।
हाँ?
ताले खोलना सीखते थे कभी कभी, शरारत में सरकारी दफ्तरों के भी।
अच्छा।
माया सभ्यता की चित्रलिपि को समझने की कोशिश करते थे, जीव विज्ञान पढ़ते थे। मुद्दा ये नहीं था कि वो हर चीज में माहिर बनना चाहते थे, मुद्दा था कि वो हर चीज के काम करने के तरीके को, उसके फंडामेंटल्स को समझना चाहते थे।
रटना या मान लेना पसंद नहीं था उन्हें।
बिल्कुल नहीं, वो जानना चाहते थे क्यों, कैसे, इसकी पीछे का असली सिद्धांत क्या है। ये समझने की प्यास ही उनकी ऊर्जा थी।
ये दिलचस्प है। और एक और बात जो बहुत उभर कर आती है वो है सत्ता या अधिकार पर संदेह, स्केप्टिसिज्म। वो किसी के पद या रुतबे से प्रभावित नहीं होते थे।
हाँ, और ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी का ही एक हिस्सा था। उनके लिए सच का पैमाना सबूत और तर्क थे, ना कि ये कि बात कौन कह रहा है। चाहे कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर उसकी बात में दम नहीं है, तर्क नहीं है, तो फाइनमैन सवाल उठाने से हिचकते नहीं थे,
जैसे उन्होंने चैलेंजर जॉन्च में किया।
बिल्कुल, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने नासा के टॉप अधिकारियों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय सीधे इंजीनियरों और तकनीशियनों से बात की, क्योंकि उन्हें पता था कि जमीनी हकीकत शायद वहीं मिलेगी। उनका रवैया था, आप कहते हैं ये सच है, पर आप ये कैसे जानते हैं, मुझे दिखाइए,
प्रमाण दिखाइए।
हाँ, प्रमाण।
और फिर वो चौथा स्तंभ, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, जिसकी बात हमने आर्लिन के संदर्भ में की थी, ये उनके लिए कितना मायने रखता था।
ये उनके जीवन दर्शन का आधार था, और आर्लिन ने इसे और मजबूत किया था। प्रामाणिकता का मतलब था अपने अंदर की आवाज सुनना, अपने मूल्यों पर टिके रहना, और बाहरी दिखावे या सामाजिक अपेक्षाओं की चिंता किए बिना वो करना जो आपको सही लगता है। आर्लिन से शादी करने का फैसला इसी प्रामाणिकता का सबूत था। वैज्ञानिक समुदाय में भी वो अक्सर लीक से हटकर चलते थे, अपनी सहजता और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते थे, जो उस समय के गंभीर, थोड़े स्टिफ वैज्ञानिकों के माहौल में अलग था।
हाँ, वो थोड़े अनौपचारिक थे। व्हाट डू यू केयर व्हाट अदर पीपल थिंक, उनके लिए सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि जीने का एक व्यवहारिक तरीका बन गया था, जिसने उन्हें एक तरह की आजादी दी।
तो अगर हम फाइनमैन के इतने लंबे और घटनापूर्ण जीवन को देखें, तो ऐसे कौन से तीन निर्णायक मोड़ या पल थे जिन्होंने वास्तव में उनके रास्ते और उनकी सोच को एक नई दिशा दी? मतलब वो टर्निंग पॉइंट्स क्या थे?
ये चुनना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे विचार से तीन सबसे अहम मोड़ ये थे। पहला तो बचपन में ही आ गया था, पिता से मिला समझने का सबक।
अच्छा।
जब उनके पिता ने उन्हें किसी चीज का नाम जानने और उसे समझने के बीच का वो जो बुनियादी फर्क सिखाया, ये महज एक अच्छी सलाह नहीं थी, ये उनके दिमाग में दुनिया को देखने का एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा था।
सोचने का तरीका ही बदल दिया।
हाँ, इसी ने उनकी आजीवन वैज्ञानिक जिज्ञासा, समस्याओं को जड़ से पकड़ने की आदत और हमेशा पहले सिद्धांतों पर वापस जाने की उनकी कार्यप्रणाली की नींव रखी। ये उनके सोचने का, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया।
जाहिर है, आर्लिन के साथ उनका प्रेम, संघर्ष और उनका जाना, ये उनके जीवन का भावनात्मक और दार्शनिक ध्रुव तारा था। आर्लिन का प्यार पाना, फिर उनकी लाइलाज बीमारी का पता चलना, सामाजिक विरोध के बावजूद उनसे शादी करना, उनकी देखभाल करना और अंततः उन्हें खो देना, इस पूरे सफर ने फाइनमैन को अंदर तक बदल दिया।
हाँ।
इसने उन्हें इंसानी रिश्तों की कीमत, दुख और नुकसान के सामने टिके रहने का साहस, और सबसे बढ़कर बाहरी दुनिया की राय से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई और अपने प्यार के प्रति वफादार रहने का महत्व सिखाया। आर्लिन का वो सवाल व्हाट डू यू केयर उनके अंदर हमेशा के लिए बस गया और उन्हें एक ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा सच्चा इंसान बनाया।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा मेरे ख्याल से चैलेंजर दुर्घटना की जांच थी। ये उनके जीवन के सिद्धांतों की सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा थी।
हाँ, पब्लिक स्टेज पे।
जी, यहाँ सिर्फ विज्ञान नहीं था, यहाँ इंजीनियरिंग, राजनीति, नौकरशाही और मानवीय गलतियों का एक जटिल जाल था। इस जांच ने उन्हें सीधे सत्ता और संस्थागत दबावों से टकराने का अनुभव दिया। यहाँ उनकी बौद्धिक ईमानदारी, सच के प्रति उनकी जिद और जटिल चीजों को सरल बनाने की उनकी अद्भुत क्षमता का इम्तिहान हुआ। उनका वो बर्फीले पानी वाला प्रयोग और वो अपेंडिक्स एफ सिर्फ जांच के नतीजे नहीं थे, बल्कि उनके पूरे जीवन के मूल्यों का, उनके दर्शन का प्रदर्शन थे।
सही कहा।
इस अनुभव ने शायद उनके इस विश्वास को और पक्का कर दिया कि प्रकृति को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता और सच आखिरकार सामने आ ही जाता है, अगर कोई उसे सामने लाने की हिम्मत करे।
फाइनमैन की कहानी सिर्फ एक महान वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, जैसा हम कह रहे हैं। इसमें हम सबके लिए आज के दौर में भी बहुत कुछ सीखने को है। जब हम सब तरह तरह के दबावों और उम्मीदों से घिरे रहते हैं, फाइनमैन के जीवन से क्या मानवीय सबक लिए जा सकते हैं?
सबसे बड़ा सबक तो शायद ईमानदारी का साहस है, करेज टू बी ऑनेस्ट। अपने सच पर टिके रहना, चाहे वो निजी जिंदगी में हो, जैसे किसी मुश्किल रिश्ते में साथ निभाना, या फिर पेशेवर जिंदगी में, जैसे अपने काम की जगह पर कुछ गलत देखकर आवाज उठाना, ये कभी आसान नहीं होता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
हमेशा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या परिणाम होंगे। फाइनमैन का जीवन दिखाता है कि ये साहस जरूरी है और अंततः यही आपको सुकून देता है। खुद के प्रति ईमानदार होना शायद सबसे बड़ी आजादी है।
और संस्थागत दबावों से निपटना, ये तो आजकल कॉरपोरेट दुनिया से लेके हर जगह एक बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल, चैलेंजर जांच इसका एक सटीक और दुखद उदाहरण है। बड़ी संस्थाओं में अक्सर सच कई परतों के नीचे दब जाता है, कभी डर से, कभी राजनीति से, कभी बस चीजों को वैसे ही चलने देने की इच्छा से।
हाँ, स्टेटस को बनाए रखने की।
जी, फाइनमैन की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे संगठनात्मक वफादारी, ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी और सत्य के प्रति निष्ठा के बीच का फर्क समझें। कई बार सच बोलना मुश्किल होता है, उसके नतीजे असहज हो सकते हैं, पर ये एक व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी भी है। ये हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या मैं सिर्फ आदेश मान रही हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सही भी है?
ये बहुत जरूरी सवाल है, और वो विचार कि जटिल समस्याओं को अक्सर सरल बुनियादी सवालों से सुलझाया जा सकता है, मुझे लगता है ये बहुत शक्तिशाली है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर चीज इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है।
हाँ, ये फाइनमैन की सोच का जादू था, कह सकते हैं। हम अक्सर विशेषज्ञों की भारी भरकम भाषा या जटिल प्रक्रियाओं में खो जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ समझ ही नहीं सकते।
सही बात है।
फाइनमैन हमें याद दिलाते हैं कि बुनियादी सवाल पूछना ये असल में काम कैसे करता है। अगर ये नहीं चला तो क्यों नहीं चला? क्या इसे और सरल तरीके से समझाया जा सकता है? ये हमें सच्चाई के ज्यादा करीब ले जा सकता है। उनका बर्फीले पानी का प्रयोग यही तो दिखाता है।
हाँ,
ये हमें एक तरह से सशक्त बनाता है कि हमें चीजों को समझने के लिए हमेशा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, बस सही सवाल पूछने और ध्यान से देखने की जरूरत है।
और आखिर में जो बात मुझे सबसे ज्यादा छूती है वो ये है कि फाइनमैन दिखाते हैं कि एक बेहद तर्कसंगत वैज्ञानिक दिमाग और एक गहरा संवेदनशील प्यार करने वाला दिल, ये एक ही इंसान में साथ साथ रह सकते हैं। विज्ञान और भावनाएं दुश्मन नहीं है।
आपने बहुत खूबसूरत बात कही।
बिल्कुल,
समाज अक्सर वैज्ञानिकों को थोड़ा ठंडा, भावनाओं से परे चित्रित करता है, लेकिन फाइनमैन बार जीवन इस मिथक को तोड़ता है। उनकी विज्ञान के प्रति दीवानगी, उनकी गहरी जिज्ञासा और दुनिया को समझने की मानवीय इच्छा से आती थी, और आर्लिन के प्रति उनका गहरा प्यार और उनकी मृत्यु का दुख उनके जीवन का उतना ही अभिन्न हिस्सा था जितना कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स।
सही।
ये दिखाता है कि हमारी इंसानियत, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते हमारी बौद्धिकता को कमजोर नहीं करते, बल्कि उससे और गहरा और सार्थक बनाते हैं। विज्ञान आखिरकार है तो इंसानों का ही प्रयास दुनिया को समझने का, और इंसान भावनाओं के बिना अधूरा है।
तो इस पूरी गहन चर्चा के सार के तौर पर, अगर हमें फाइनमैन के जीवन और इस किताब से तीन मुख्य बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या हों?
जरूर, मेरे ख्याल से ये तीन बातें होंगी। एक, भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सबसे गहरी भावनात्मक सीख आर्लिन और फाइनमैन के रिश्ते से मिलती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार और समर्पण सामाजिक दबावों, परंपराओं और यहां तक कि जीवन की सबसे क्रूर सच्चाइयों जैसे लाइलाज बीमारी और मृत्यु से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यह दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी ईमानदारी, खुला संवाद और एक दूसरे का अटूट साथ कितना मायने रखता है। शायद यही चीजें हैं जो हमें सचमुच इंसान बनाती हैं। एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक सबक फाइनमैन का वो मूल मंत्र है कि किसी भी तरह की ईमानदारी, चाहे वैज्ञानिक हो या व्यक्तिगत, उसकी शुरुआत खुद को धोखा न देने से होती है। उनका वो कथन पहला सिद्धांत है कि आप खुद को मूर्ख ना बनाएं, और आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे मूर्ख बनाना सबसे आसान है। प्रकृति और वास्तविकता को हमारी इच्छाओं या हमारे जनसंपर्क अभियानों से नहीं बदला जा सकता। इसलिए सच का सामना करना, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वही ज्ञान और प्रगति की पहली सीढ़ी है। एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। सबसे व्यवहारिक और सार्वभौमिक सीख जो हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं वो शायद यही है। सवाल पूछने की हिम्मत रखें, खासकर सत्ता और स्थापित मान्यताओं पर। सिर्फ नाम जानने से संतुष्ट ना हों, बल्कि चीजों को समझने की कोशिश करें, उनकी तह तक जाएं, और सबसे बढ़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने तर्क और अपने मूल्यों को बाहरी दुनिया की तारीफ या आलोचना से ज्यादा वजन दें। जैसा आर्लिन ने बार बार याद दिलाया, तुम्हें क्या परवाह कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।